आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ मरकजी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर सकती है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 3 मुल्कों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत का 3 दिन का सरकारी दौरा करेंगे। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी के लिए गजाई इमदाद भेजी है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत यूक्रेन के तनाजे को हल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। और पेरिस में पैरालंपिक मुकाबलों में नवदीप सिंह ने मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीत रहा है। वहीं एथलीट सिमरन शर्मा ने खवातीन के 200 मीटर मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर सकते हैं। जम्मू में बीजेपी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने खुद अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में यकीन दहानी करवाई थी कि असेंबली चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का एक मुनासिब वक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात तारीखी नौयत के होंगे क्योंकि ये मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दफा 370 की मनसूखी के बाद पहले असेंबली चुनाव होंगे।
370 हटने से जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी।
वजीर दाखला ने कहा कि आजादी के बाद से पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के राय दहिंदगान कौमी परचम और एक आईन के तहत अपने हकी राय दही का इस्तेमाल करेंगे जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जानिब से तरतीब दिया गया है। जनाब शाह ने जम्मू कश्मीर में पुराने निजाम को वापस लाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिशों के लिए अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। जनाब शाह ने कहा कि एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को फिर से सर उठाने, खुद मुख्तारी देने, गुज्जरों, पहाड़ी बकरवाल और दलितों समेत किसी भी बिरादरी के साथ नाइंसाफी की इजाजत नहीं देगी जिन्हें बीजेपी की बदौलत रिजर्वेशन मिला है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर खलीजी ताउन काउंसिल जीसीसी के वजराय खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत के लिए सऊदी अरब के शहर रियाद का दौरा करेंगे। इम्कान है कि दो रोजा दौरे के दौरान वो खलीजी ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक के वजरा के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। जीसीसी खिता भारत के लिए एक बड़े शराकतदार की हैसियत से उभरा है और वजरा खारजा की ये मीटिंग मुख्तलिफ शोबों में भारत और जीसीसी के दरमियान इदारा जाती ताउन का जायजा लेने और इस ताउन को वसत देने के लिए एक मौका होगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉ जयशंकर मंगल से दो रोजा दौरे के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन जाएंगे। बर्लिन का ये उनका तीसरा बाहमी दौरा होगा। भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत नौयत की कलीदी शराकतदारी है और जर्मनी भारत का एक अहम तिजारती शराकतदार है और सबसे बड़े गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारों में से एक है। दौरे के दौरान वजीर खारजा जर्मनी के वजीर खारजा के साथ साथ वहां की क्यादत और जर्मनी की हुकूमत के दीगर वजीरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसका मकसद भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेना है। इसके बाद इस माह की 12 तारीख से डॉ जयशंकर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा का सरकारी दौरा करेंगे। जिनेवा अक्वामे मुत्तहदा के बहुत से इदारों और बैनुल अक्वामी तंजीमों का मरकज है। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा बैनुल अक्वामी तंजीमों के सरबराहों और नुमाइंदों के साथ मीटिंगें करेंगे जिनके साथ भारत सरगर्मी के साथ मसरूफ अमल है। वो स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा के साथ भी मीटिंग करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी का जायजा लिया जा सके और बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए मौके तलाश किए जा सकें। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत का सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वली अहद शहजादा नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान पहले से कायम मजबूत ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। شیخ خالد کے ہمراہ وزراء، سینئر حکام، کاروباری رہنما اور متحدہ عرب امارات کے ممتاز معاشی شراکت دار سمیت اعلی سطحی وفد بھی بھارت آئے گا۔ اپنے قیام کے دوران ولی عہد شہزادہ بھارت کے سینئر حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان مذاکرات میں اہم معاشی شعبوں میں تعاون بڑھانے، دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے آپسی فائدے کے لیے پہلے سے حاصل کیے گئے اہداف کے مواقع کا پتہ لگایا جائے گا۔ اعلی سطح کی میٹنگوں کے علاوہ شیخ خالد بہت سی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے جو بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط معاشی اور ثقافتی رشتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ توقع ہے کہ ان مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ سفارتی مشن متحدہ عرب امارات اور بھارت کے تعلقات کی پیش رفت میں ایک بڑا اہم قدم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تعمیری تعاون، خصوصاً معاشی پائیدار ترقی، سرمایہ کاری، تجارت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے ایک بین الاقوامی مثال بن گیا ہے۔ بھارت نے تین افریقی ملکوں زمبابوے، زامبیا اور ملاوی کو انسانی بنیاد پر غذائی امداد بھیجی ہے تاکہ خشک سالی سے متاثرہ ان خطوں میں عوام کی خوراک کی ضرورتوں سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ کل زمبابوے کے لیے ناوا شیوا بندرگاہ سے 1000 میٹرک ٹن چاول کی کھیپ روانہ کی گئی۔ وزارت کے مطابق بھارت نے زامبیا کے لیے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی غرض سے 1300 میٹرک ٹن مکئی کی کھیپ بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ خشک سالی سے متاثرہ مالاوی کو 1000 میٹرک ٹن چاول بھیجا گیا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین جیسے ممالک یوکرین میں جاری تنازع کو حل کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے تنازع کو حل کرنے میں بھارت کی کوششوں کا اعتراف کیے جانے کے بعد 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں محترمہ میلونی نے یہ بات کہی۔ اطالوی وزیراعظم نے شمالی اٹلی میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کل یہ بات کہی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے زمین پر جاری تازہ پیش رفت پر بات چیت کی اور سردیوں کی موسم کی آمد کے تناظر میں یوکرین کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ مہینے کیو کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران وزیراعظم مودی نے جناب زیلنسکی سے کہا تھا کہ یوکرین اور روس دونوں کو وقت ضائع کیے بغیر مل کر جنگ کو ختم کرنا چاہیے اور بھارت خطے میں امن کی بحالی کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا تھا کہ بھارت تنازع کو شروع سے ہی امن کے ذریعے حل کرنے کا حمایتی رہا ہے اور وہ بذات خود اس تنازع کو سلجھانے میں اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم مودی کا 23 اگست کا یوکرین دورہ سال 1991 میں یوکرین کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ہوئی چوٹی کانفرنس مذاکرات کے 6 ہفتے بعد ہوا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے سینئر آئی اے ایس افسر توہین کانتا پانڈے کو فائنانس سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ سال 1987 بیچ کے اوڈیشا کاڈر کے افسر جناب پانڈے فی الحال وزارت خزانہ میں دو اہم امور کے سیکرٹری انچارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جناب پانڈے پبلک انٹرپرائزز کے محکمے ڈی پی ای اور سرمایہ کاری اور عوامی اثاثہ جاتی انتظام کے محکمے ڈی پی ایم کے سیکرٹری ہیں۔ مغربی بنگال میڈیکل کاؤنسل ڈبلیو بی ایم سی نے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے گرفتار سابق پرنسپل سندیپ گھوش کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ان سے 72 گھنٹے میں اطمینان بخش جواب طلب کیا گیا ہے۔ ڈبلیو بی ایم سی نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل کو مالی بےضابطگیوں اور بدعنوانی میں مبینہ طور پر شامل ہونے پر نوٹس دیا گیا ہے۔ ایس بی آئی فاؤنڈیشن نے کمزور معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے 10,000 ہونہار طلبہ کو مالی امداد فراہم کرنے والی آشا اسکالرشپ پروگرام کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اسکالرشپ کے تحت چھٹی جماعت سے پوسٹ گریجویٹ تک کے طلبہ کو 15,000 سے 2,00,000 روپیوں تک کی مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں آئی آئی ٹیز، آئی آئی ایمز اور بیرون ملک تعلیم کے خصوصی زمرے کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے طلبہ کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ ایس بی آئی کی آشا اسکالرشپ کے لیے ویب سائٹ www.sbiifashascholarship.org پر 1 اکتوبر 2024 تک درخواستیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाने वाले कौमी इनाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 15 सितंबर तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत की जानिब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर उनका ऐलान किया जाता है। हर साल जनवरी में इन इनामात की तकरीब का इनेकाद किया जाता है। इन इनामात का मकसद बच्चों की तवानाई, अज्म, सलाहियत, जोश और जज्बे की हौसला अफजाई करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की वेबसाइट पर 5 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए दरखास्तें पेश की जा सकती हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान बेहद शदीद बारिश की पेशगोई की है। तेलंगाना में कल से सैलाब से मुतासर खम्मम और महबूबाबाद जिलों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। महबूबाबाद में आज सुबह 6 बजे तक 182 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि खम्मम में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज ख्वानदगी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अफराद, बिरादरियों और सोसाइटियों के लिए ख्वानदगी की अहमियत के बारे में हरेक को याद दिलाया जा सके। ख्वानदगी के आलमी दिन के लिए इस साल का मौजू है कसीर लिसानी तालीम को फरोग देना, आपसी मफाहमत और अमन के लिए ख्वानदगी। भारत सरकार के स्कूली स्कीम और ख्वानदगी के महकमे ने कल ख्वानदगी के आलमी दिन के मौके पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। पेरिस में जारी पैरालंपिक खेल मुकाबलों में भारत ने 10वें दिन के अख्ताम से पहले मजीद 2 तमगे जीतकर अपने गलबे को बरकरार रखा है। नवदीप सिंह ने ईरानी एथलीट के बाद मर्दों के भाला फेंकने के F41 मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इस दौरान एथलीट सिमरन शर्मा ने खवातीन के 200 मीटर T12 ट्रैक मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के इख्तिताम से पहले भारतीय एथलीट्स ने एथलेटिक्स में 2 मजीद तमगे जीतकर अपना लोहा मनवा लिया है। टोक्यो ओलंपिक में 4थे नंबर पर रहे नवदीप सिंह ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीतकर अपनी मायूसी दूर की है। नवदीप ने अपनी कोशिशों की बदौलत 45 मीटर का फासला उबूर करते हुए अपनी तीसरी कोशिश में 47.32 मीटर की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और पेरिस ओलंपिक में खेलों में नया रिकॉर्ड कायम किया। मानिक शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक में मर्दों के भाला फेंकने के F41 मुकाबलों में सोने का तमगा जीतने पर नवदीप सिंह को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवदीप पर मुल्क को फख्र है। इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिमरन शर्मा को भी मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में खवातीन के 200 मीटर T12 मुकाबलों में कांस्य का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना।
शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क के अवाम को गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद देने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने मुतनाजे IAS पूजा खेडकर को हुकूमत की जानिब से नौकरी से बरतरफ किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप की खबर है हरियाणा में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ मरकजी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कर सकती है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 3 मुल्कों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। अबू धाबी के वलिया शहजादा शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत का 3 दिन का सरकारी दौरा करेंगे। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी के लिए गजाई इमदाद भेजी है। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत यूक्रेन के तनाजे को हल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। और पेरिस में पैरालंपिक मुकाबलों में नवदीप सिंह ने मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। वहीं एथलीट सिमरन शर्मा ने खवातीन के 200 मीटर मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।